आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गेमिंग, एनिमेशन और फिल्म साजी जैसे तकनीकी शोबों में रोजगार के नए मौकों को उजागर किया है। जम्मू कश्मीर में कल असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। बिहार के 16 जिलों में 4 लाख से ज्यादा लोग सैलाब की जद में हैं। मरकज ने सूरत हाल पर काबू पाने में रियासती सरकार की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। जमैका के वजीर आजम एंड्रयू होलनेस आज से भारत के 4 रोजा दौरे पर रहेंगे। इसराइल ने यमन में हौसी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं और बरूनी में जूनियर आलमी वुशू चैंपियनशिप में भारत ने 7 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रोजगार की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल और गेमिंग, एनिमेशन और फिल्म मेकिंग वगैरह जैसे तकनीकी शोबों में उभरते हुए मौकों को उजागर किया है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने भारत की तकनीकी सलाहियत के जबरदस्त इम्कानात का खासतौर पर जिक्र किया और तकनीककारों से कहा कि वो क्रिएट इन इंडिया मौजू के तहत 25 चैलेंजों में हिस्सा लें, जिसका एहतमाम इत्तलात नशरियात की वजारत कर रही है।
आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहाँ तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इस आयोजन में कई सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है जो इन चैलेंजेस को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं।
जनाब मोदी ने तख्लीककारों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वो इन चैलेंजों में हिस्सा लेने के लिए wavesindia.org देखें। इससे पहले इस साल 22 अगस्त को इत्तलात नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का आगाज किया था। ये चैलेंज आइंदा आलमी ऑडियो विजुअल और तफरीह सरबराह कॉन्फ्रेंस वेब से पहले मुनक्किद किए जा रहे हैं जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन डिजाइन इन इंडिया डिजाइन फॉर द वर्ल्ड के मुताबिक है। इत्तलात नशरियात की वजारत के मुताबिक आलमी ऑडियो विजुअल और तफरीह सरबराह कॉन्फ्रेंस का इनकाद अगले साल 5 से 9 फरवरी तक कराया जाएगा, जिसका मकसद भारत की मीडिया और तफरीही सनत नीज तख्लीकी मईशत को फरोग देना है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस मरहले में 7 अजला पर मुश्तमिल 40 असेंबली हलकों में इंतखाबात होंगे। 40 में से 16 सीटें कश्मीर डिवीजन में हैं जबकि 24 जम्मू खित्ते में हैं। असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम कल शाम खत्म हो गई। मरकज ने बिहार सरकार को सैलाब के बुहरान से निमटने में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। दाखिली उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने कल पटना में बिहार के सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मरकज बिहार के हुकाम के साथ लगातार राबते में है। वजीर मौसूफ ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो भारतीय फिजाइया सैलाब के मुतासिरीन को तैयारी के जरिए महफूज जगहों पर पहुंचाने और राहत का सामान भेजने में मदद करेगी।
हमारी एनडीआरएफ की टीम यहाँ हर आपदा में बिहार के लोगों को सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। अभी 8 टीम को रिजर्व में रखा गया है और 11 टीमें अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेज दी गई और 11 टीमें विभिन्न स्थानों पर हैं।
बिहार में कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा और कमला बालान समेत कई नदियों के सतहयाब में इजाफा होने से और पुश्ते टूट जाने की वजह से 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं। कोसी और गंडक बैराज से बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने के बाद सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण और गोपालगंज के कई इलाकों को सैलाब की वजह से शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा है। 16 अजला में 4 लाख से ज्यादा लोग सैलाब की जद में हैं। कोसी इलाके में भारत नेपाल सरहद के करीब सैलाब की वजह से रेल खिदमात मुतासिर हुई हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
नेपाल के तास वाले इलाके में लगातार शदीद बारिश की वजह से कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा नदियों की सतह आब में तेजी से इजाफा हो रहा है। मकानात और खेत जेरे आब आ गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 24 मुख्तलिफ टीमों को राहत और बचाव के लिए तैनात किया गया है। कटिहार रेल डिवीजन ने भारत नेपाल सरहद के करीब जोगाबानी में सैलाब और रेल की पटरियों पर आ जाने की वजह से मुख्तलिफ ट्रेनों को रद्द कर दिया है। धर्मेंद्र कुमार रॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
नेपाल की वजारत दाखिला ने तस्दीक की है कि सैलाब, मिट्टी के तोदे गिरने और कुदरती आफात के हादसों में 132 अफराद हलाक हुए हैं। वजारत ने कहा है कि आफात नागहानी के हादसों की वजह से अब तक काठमांडू वादी में 68, बागमती रियासत में 45, कोशी में 17 और मधेश में 2 अफराद हलाक हुए हैं। आफात नागहानी से मुतालिक वाकयात में 64 अफराद लापता हैं जबकि 61 लोग जख्मी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की सरगर्म शमूलियत की वजह से मुल्क भर से 3,626 लोगों को बहफाजत बाहर निकाला गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर की अबरूरेजी और कत्ल के वाके पर अज खुद कार्रवाई करते हुए आज इस केस की दोबारा समाप्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शाये की गई मुकदमात की फहरिस्त के मुताबिक भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की क्यादत में 3 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच इस केस की समाप्त करेगी। पिछले हफ्ते बेंच ने जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं इस केस की समाअत मगरबी बंगाल सरकार की दरख्वास्त पर मुलतवी कर दी थी। ये समाअत 27 सितंबर को होना थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रियासती सरकार के इस हुक्म की तरफ तवज्जो दिलाए जाने के बाद तशवीश का इजहार किया था कि रात के वक्त खातून डॉक्टर्स की ड्यूटी न लगाई जाए। वजारत तालीम मुल्क के स्कूलों की बेहतरी के लिए आलमी बैंक की हिमायत से सीखने सिखाने और रियासतों के लिए नताइज यानी स्टार्स प्रोजेक्ट चला रही है। स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत कौमी मालूमात मुश्तरक करने से मुतालिक 2 रोजा कौमी प्रोजेक्ट आज से भोपाल में मुनक्किद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश स्कूली तालीम के सेक्रेटरी डॉ संजय गोयल ने बताया कि इस वर्कशॉप का इफ्तिताह मध्य प्रदेश स्कूली तालीम के वजीर उदय प्रताप सिंह और मरकजी तालीम के सेक्रेटरी संजय कुमार करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जमैका के वज़ीर-ए-आज़म डॉ एंड्रयू होलनेस आज से भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर रहेंगे। ये उनका भारत का पहला दौरा है और जमैका के किसी वज़ीर-ए-आज़म का भारत का ये पहला दोतरफा दौरा भी है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जमैका के वज़ीर-ए-आज़म दोतरफा मुलाकातों से अलग कई बार मिल चुके हैं। इस दौरे में डॉ होलनेस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ वफद की सतह की बातचीत करेंगे और सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया से भी मुलाकातें करेंगे। इस दौरे से उन्हें दीगर अहम शख्सियतों से मुलाकात करने और तिजारत और सनत की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। उम्मीद है कि इस दौरे के दौरान बहुत से मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे जिससे दोतरफा तआवुन को फरोग हासिल होगा। भारत और जमैका के दरमियान मजबूत तारीखी और सकाफती रिश्ते हैं जिनका ताल्लुक दोनों मुल्कों के माजी के नौआबादियाती निजाम, जमहूरियत और आजादी की अकदार नीज क्रिकेट के जुनून से है। उम्मीद है कि इस दौरे से जमैका और भारत के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात, इकतसादी ताउन और देरीना रिश्तों में मजीद मजबूती आएगी। वजीर खारजा डॉ एस जय शंकर कल वाशिंगटन डीसी में अपने अमरीकी हममनसब के साथ मुलाकात करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा बाहमी और आलमी उमूर, नीज यूक्रेन की जंग के अलावा मगरबी एशिया के बहरान पर वसी तर तबादले ख्याल करेंगे। डॉ जयशंकर जो अमरीकी राजधानी पहुंचे थे काबीना के दर्जे के दूसरे वजरा और बाइडेन इंतजामिया के साथ सीनियर हुकाम के साथ मुलाकात करेंगे। जनाब ब्लिंकन के साथ मीटिंग के अलावा वजीर खारजा दानिश्वर बिरादरी के साथ भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इस माह की 21 तारीख को एक बाहमी मीटिंग के लिए अपने डेलवेयर रिहायशगाह पर वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की मेजबानी की थी। غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں نے ستمبر میں بھارت کی شیئر مارکیٹ میں ابھی تک 57,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں ایف پی آئیز نے شیئر مارکیٹ میں 57,369 کروڑ روپے کا سرمایہ لگایا۔ اس طرح پچھلے 9 ماہ کے دوران یہ اب تک کا سب سے زیادہ بیرونی سرمایہ ہے۔ ان کمپنیوں نے 877 کروڑ روپے قرضہ مارکیٹ میں بھی لگائے ہیں۔ اس طرح بھارت کی اثاثہ مارکیٹ میں اس مہینے کل سرمایہ کاری 58,236 کروڑ روپے ہو گئی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 سے 5 دنوں کے دوران ملک کے شمال مشرقی حصوں میں الگ الگ مقامات پر شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق تمل ناڈو اور کیرالا میں آج، جبکہ آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور اروناچل پردیش میں ہفتے کے روز الگ الگ مقامات پر بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ملک کے شمال مغربی اور وسطی علاقوں میں بارش ہونے کے کوئی نمایاں آثار نہیں ہیں۔ اسرائیل نے یمن میں حوثی ٹھکانوں پر ہوائی حملے کیے ہیں، جس سے مشرقی وسطی کے تنازع میں ایک اور محاذ کھل گیا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے پچھلے 2 دن میں ایران کے حلیف حوثی دہشت گردوں کی طرف سے حال ہی میں اسرائیل کے خلاف کیے گئے میزائل حملوں کا جواب ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
اسرائیلی فضائیہ نے یمن میں بقول اس کے حوثی دہشت گرد نظام سے تعلق رکھنے والے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان نشانوں میں بجلی پلانٹس اور بندرگاہیں بھی شامل ہیں، جن کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حوثی انہیں اس خطے میں ایران کے ہتھیار، کمک اور تیل لانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان فضائی حملوں میں کم سے کم 4 لوگ ہلاک اور 29 زخمی ہو گئے۔ حوثیوں کی وزارت صحت کے ایک بیان کے مطابق بندرگاہی شہر حدیدہ کے مکینوں نے بتایا کہ بمباری کے بعد دور دور تک بجلی کا سلسلہ رک گیا۔ یہ فوجی کارروائی اسرائیل کے خلاف حوثیوں کی شدید جارحیت کے مد نظر کی گئی ہے، کیونکہ یہ گروپ 7 اکتوبر سے، جب غزہ جنگ شروع ہوئی تھی، اسرائیلی ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون سے بار بار حملے کر رہا ہے۔ ادھر حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے فلسطین کے ساتھ اتحاد کے تحت کیے گئے ہیں۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے تل ابیب کے قریب بین گوریون بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہفتے کو ایک بیلسٹک میزائل داغا، جس کے بارے میں اسرائیل نے بتایا کہ اس نے اسے فضا میں ہی مار گرایا۔ حوثیوں کے ایک اور میزائل کو اسرائیل نے جمعے کو مار گرایا تھا۔ ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
اسرائیل کی دفاعی فوجوں نے اسرائیلی شہریوں کو درپیش سبھی خطرات سے نمٹنے کے لیے فاصلے سے قطع نظر اپنی کارروائی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حوثیوں پر پچھلے سال سے ایران کی ہدایت کے مطابق کارروائی کرتے رہنے اور اس کے لیے فنڈ حاصل کرتے رہنے اور عراقی ملیشیا کے ساتھ مل کر کارروائیاں کرنے کا الزام لگایا ہے۔ جونیئر عالمی ووشو چیمپئن شپ میں بھارتی ٹیم نے 7 تمغے حاصل کیے ہیں، جس میں سونے کے 2 تمغے بھی شامل ہیں۔ یہ چیمپئن شپ برونئی کے بندر سیری بیگوان میں منعقد کی گئی تھی۔ بھارت نے سونے کے 2، چاندی کا 1 اور کانسے کے 4 تمغے حاصل کیے ہیں۔ بھارت کے آرین نے لڑکوں کے 48 کلوگرام کے جونیئر زمرے میں چین کے گوانگ ہونیر کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ۔
شکریہ کلیم۔ دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹر سہارا نے آکاش وانی پر من کی بات پروگرام میں دیے گئے وزیر اعظم کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ امریکی حکومت نے تقریباً 300 قدیم نوادرات بھارت کو واپس کیے ہیں۔ پی ایم نے زبانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں تقریباً 20,000 زبانیں ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے انوکھی کوششیں جاری ہیں۔ ایسی ہی ایک زبان سنتھالی زبان بھی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے بہار میں آئے سیلاب کی صورتحال کے تعلق سے لکھا ہے کہ 1 درجن سے زائد اضلاع میں سیلاب سے غیر معمولی تباہی، لاکھوں کی آبادی متاثر، ریلوے ٹریک پر پانی آنے سے ٹرینوں کی آمد و رفت میں خلل، 20 ضلعوں میں الرٹ، مرکز نے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سائنسداں یوگا کے کراماتی اثرات سے متفق ہیں۔ اس حوالے سے اخبار نے لکھا ہے کہ جو شخص صحت مند رہنا چاہتا ہے اسے یوگ کو اپنانا ہوگا۔
خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گیمنگ، اینیمیشن اور فلم سازی جیسے تخلیقی شعبوں میں روزگار کے نئے موقعوں کو اجاگر کیا ہے۔ جموں کشمیر میں کل اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کے لئے سبھی انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ بہار کے 16 ضلعوں میں 4 لاکھ سے زیادہ لوگ سیلاب کی زد میں ہیں۔ مرکز نے صورتحال پر قابو پانے میں ریاستی سرکار کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ جمائیکا کے وزیر اعظم اینڈریو ہولنس آج سے بھارت کے 4 روزہ دورے پر رہیں گے۔ اسرائیل نے یمن میں حوثی ٹھکانوں پر ہوائی حملے کیے ہیں और बरूनेई में जूनियर आलमी वुशु चैंपियनशिप में भारत ने 7 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।